मस्जिद की सफाई की फजीलत बयान फरमा दीजिए।
मस्जिद जो है ये आम घर से हट करे, इसका हुक्म आम घर के मुकाबले में अलग है। कि जैसे ही आप मस्जिद में दाखिल हुए, वो आपने एहतिकाफ की नियत कर ली, अब आपका सवाब का मीटर चलना शुरू हो गया। एक उसकी अपनी ही नूरानियत, एक उसकी अपनी ही रौनक है मस्जिद की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वअहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन तहिरा बैतिय लित्तौइफीन वल आकिफीन व रुकअ सुजूद। और हमने ताकीद फरमाई इब्राहिम और इस्माइल को कि मेरा घर खूब सुथरा करो तवाफ वालों और एहतिकाफ वालों और रुकू सुजूद वालों के लिए। इस आयत मुबारक के तहत जो मुफ्ती अहमद अल नईमी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मस्जिदों को गंदगी और कूड़े से पाक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मस्जिद की तआज़ीम काबाए मुशर्रफा की तरह है। इसीलिए काबे की तरह मस्जिद की छत पर भी बिला जरूरत चढ़ना मना है, और काबे की सफाई का तो इस आयत में हुक्म दिया गया, लिहाजा तमाम मस्जिदों के लिए भी यही हुक्म साबित होगा। तो देखिए मस्जिद की सफाई की कितनी फजीलत है और क्या इसकी अहमियत है। बाजू कहते हैं ना, हमारे यहाँ ये भी बड़ा अलमिया है कि बाजू जिसम से बदबू आ रही होती है और मस्जिद में चले जाते हैं, कि बाजू तेल की बदबू आ रही होती है मस्जिद में चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि इससे मुसलमानों को और फरिश्तों को तकलीफ होती है। उलमा ने लिखा है ना, अगर किसी को गंदा दहनी का मरज है, जैसे मुंह में बदबू आने का, अगर किसी को ये मरज है खुदा ना खास्ता, तो उसके लिए जमात जो है वो, यानी जमात उसको माफ़ है। अब वो जमात के लिए हाजिर नहीं होगा मस्जिद में, क्योंकि उसे आना नाजायज है। वो घर पे नमाज पढ़े और अपना इलाज भी करे, फिर
इलाज भी करें। सही,
ये ना हो कि चलो यार मैं अब जो ना फजर में जल्दी पढ़ के या जब जाऊँ पढ़ के सो जाऊँ, मेरे तो मस्जिद की माफ़ी है और मैं ये मरज जाने दूँ, नहीं, इलाज करे। इससे ना खुदा ना को ऐसी चीज़ खा ली जैसे कच्चा प्याज, कच्ची मूली या कच्चा लहसुन, और अब उसकी बदबू नहीं जा रही, तो ऐसी सूरत में मस्जिद में आना मना है कि नहीं आएगा वो। जब तक अपने मुंह की सफाई नहीं कर लेता, चाहे मिसवाक से करे या किसी टूथपेस्ट वगैरह से करें, मुंह की सफाई ज़रूरी है,
ठीक,
और फिर आए मस्जिद में। अल्लाह करीम हमें मस्जिद का अदब करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन आमीन।